चर्चा का विषय है।
ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है भारत की सेमीकंडक्टर क्रांति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत सेमीकंडक्टर मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमितेश कुमार सिन्हा, इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के चेयरमैन पंकज महिंद्रू, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल्स काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष अमृत मनवानी और आईटी एवं तकनीकी विशेषज्ञ सुबिमल भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
कभी सोचा है कि आपका स्मार्टफोन आपकी आवाज सुनकर तुरंत जवाब कैसे देता है, या फिर YouTube या कोई और OTT प्लेटफॉर्म को कैसे पता चल जाता है कि आपको कौन सी फिल्म पसंद आएगी? जवाब है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक का हृदय है। सेमीकंडक्टर्स आज हमारे चारों ओर हैं। वे उन कंप्यूटरों और फोन को कंट्रोल करते हैं जिनका इस्तेमाल हम कारोबार या प्रशासन में करते हैं। जिन फोन, मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटरों का इस्तेमाल हम कारों और विमानों को कंट्रोल करने में करते हैं, वो सेमीकंडक्टर्स पर ही आधारित होते हैं। यहां तक कि ECG या दिमाग को पढ़ने वाली MRI मशीनें और बीमारियों का निदान करने वाली और इलाज करने वाली मशीनों और डिफेंस तकनीक में सेमीकंडक्टर्स छाया हुआ है। आज घरों में TV, म्यूजिक सिस्टम, वीडियो गेम, वेब सीरीज देखने में जिन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का हम इस्तेमाल करते हैं, ये आनंद भी हमें एक छोटी सी चिप यानी सेमीकंडक्टर ही दिलाता है। सेमीकंडक्टर की दुनिया काफी तेजी से बदल रही है और इसी दिशा में भारत भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है, और इसके लिए नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन किया गया। क्या है इसके मायने और किस तरीके से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भारत अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं IT एंड टेक एक्सपर्ट सुबिमल भट्टाचार्य जी, साथ ही साथ फॉर्मर चेयरपर्सन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल्स काउंसिल ऑफ इंडिया के अमृत मानवानी। कार्यक्रम में हमारे साथ आगे जुड़ेंगे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के CEO अमितेश कुमार सिन्हा और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल राजू गोयल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुबिमल सर, आपके साथ अगर शुरू करें और ये समझने की कोशिश करें कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में सेमीकंडक्टर को लेकर हलचल काफी बढ़ी है, और जब सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन हो रहा है तो पिछले संस्करण की तुलना में इसका बहुत बड़ा व्यापक स्वरूप हमें देखने को मिला है। क्या उद्देश्य है सेमीकॉन इंडिया 2025 के?
देखिए, जैसे आपने की बताया कि ये चौथा संस्करण है इस इवेंट की, और पहले वाला बेंगलोर में हुआ था 2002 में, और इससे अब तक जो पार्टिसिपेशन के लेवल है वो हर बार करीब दुगना होते जा रहे, तो इससे आपको दर्शाता है कि भारत में जो सेमीकंडक्टर्स इकोसिस्टम हम बहुत देर से शुरू किए हुए, और ये चार साल में हमने जितने कामयाबी हासिल की है वो अतुलनीय है। कल मिनोचा साहब जो सेमी की ग्लोबल जितने कंपनीज की एसोसिएशन उसके CEO जो बता रहे थे कि परफॉर्मेंस जो भारत के रहा वो अनप्रेसिडेंटेड है, और चाइना जो 12 साल में किया और अमेरिका ने 14 साल में किया, हमने 3 साल में करके दिखाया। तो जिस तरीके से ये इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन को सरकार की तरफ से प्रभुत्व दे गई, और जिस तरीके से एक माइलस्टोन बेच अप्रोच से पिछले 3 साल में हमने काम किया हुआ, इससे हम देख रहे हैं कि कई सारे इन्वेस्टमेंट आए हैं। अब जैसे कि मैं बता सकता हूं कि आज के डेट में भारत की सेमीकंडक्टर मार्केट की साइज है 4,500 करोड़ रुपया, और ये 2030 तक जब जाएंगे ये 10,00,000 करोड़ की पहुंच जाएंगे। तो इसमें एक इंक्लूसिव तौर पर आप डिजाइन सिस्टम्स पकड़िए, आप इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, पैकेजिंग, और ये सारे क्षेत्र में जिस तरीके से आपकी ह्यूमन एलिमेंट है, इनकी स्किलिंग की बात आती है, हर एक मल्टी डायरेक्शन अप्रोच से सरकार ने काम किया हुआ, और इसका नतीजा बड़े कम समय में दिखाई दे रहे हैं। और ये सेमीकॉन इंडिया 2025 में सबसे बड़ी बात है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया कि ये चिप्स डिजिटल डायमंड्स है, तो ये सबसे बड़ी बात है। मुझे लगता है कि हमारे देश में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ये जो इतने कम समय में हम देश भर में जाके संस्थाओं को जोड़ पाए, NIT सिलचर कहाँ नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू IIT, ऐसे सब संस्था से काम करा के एक देश के लिए एक कॉमन चिप बना पा रहे, ये बहुत बड़ी बात है।
जी हाँ, आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने कल अपने वक्तव्य में कहा कि सेमीकंडक्टर की दुनिया में चिप्स डिजिटल हीरे की तरह हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
एक बात कही जाती है, ऑयल वाज ब्लैक गोल्ड बट चिप्स आर डिजिटल डायमंड्स। हमारी पिछली शताब्दी को ऑयल ने शेप किया। दुनिया का भाग्य तेल के कुओं से तय होता था। तेल के इन कुओं से कितना पेट्रोलियम निकलेगा, इस आधार पर ग्लोबल इकोनॉमी ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन 21वीं शताब्दी की शक्ति छोटी सी चिप में सिमट करके रह गई है। ये चिप भले छोटी सी है, लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को बड़ी गति देने की ताकत है।
अमृत जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के आउटकम की उम्मीद कर सकता है भारत इस सेमिकॉन इंडिया 2025 से।
देखिए, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बोला था कि हमारा एक गंतव्य जो है वो है डिजिटल इंडिया, मतलब पूरा देश जो है डिजिटाइज हो जाए और एक दूसरे से डिजिटली जुड़े, उसके लिए सेमीकंडक्टर का होना जरूरी है। और अब ये सिचुएशन है कि पहले स्पेक स्कीम में और फिर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्कीम में सरकार ने बहुत ही प्रोत्साहन प्रदान किया है, इंसेंटिव प्रदान किए हैं, जिसके तहत करीब 10-12 कंपनीज को ये इंसेंटिव भी दिए गए हैं, जिसमें ज्यादातर इंडियन कंपनीज हैं जिनका फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन है, लेकिन एक दो बाहर की कंपनीज भी हैं। तो उनको ये इंसेंटिव इसलिए दिया गया कि ताकि वो यहाँ इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण करें और सेमीकंडक्टर चिप्स वो वेफर जो है उसकी असेंबली करें। ये जो है रोजगार बहुत देगा, जो मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार है उसमें बहुत बढ़त मिलेगी। मैं सोचता हूँ कि अगले 10 वर्षों में करीब 1 करोड़ लोगों को इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोजगार मिल सकता है।
जी, सेमीकंडक्टर का बाजार कितना बड़ा है और इसमें भारत की क्या है स्थिति, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में।
भारत का चिप बाजार तेजी से बढ़ रहा है। 2030 तक इसके लगभग $110 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। 2023 से 2025 के बीच ISM के तहत 6 प्रमुख सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी गई है। भारत को सेमीकंडक्टर नवाचार और विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। सरकार ने 76,000 करोड़ के निवेश के साथ सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है, जिसे भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। यह मंत्रालय के मार्गदर्शन में संचालित होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए एक एकीकृत सेमीकंडक्टर केंद्र स्थापित किया गया है। सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए ISM महत्वपूर्ण है, जिसके 2026 तक $63 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। मई 2025 में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा और बेंगलुरु में 2 अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर डिजाइन सुविधाओं का उद्घाटन किया। ये केंद्र उन्नत 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन पर केंद्रित भारत के पहले केंद्र है, जो देश की सेमीकंडक्टर नवाचार यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होंगे। आकाशवाणी से श्रेया की रिपोर्ट के साथ नेहा गोस्वामी।
चर्चा का विषय है कार्यक्रम में, अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के CEO अमितेश कुमार सिन्हा। अमितेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ सेमीकॉन इंडिया 2025 चल रहा है और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर की चर्चा है और भारत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेमीकंडक्टर की दिशा में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। किस तरह की प्रगति हो रही है और क्या क्या लक्ष्य हैं जो अगले 10 वर्ष में भारत हासिल करने की तरफ देख रहा है?
सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी लीडरशिप में हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई। जो पहले की पॉलिसीज थी वो किसी खास चीज के ऊपर में केंद्रित थी कि फैब्रिकेशन हो जाए या पैकेजिंग हो जाए, लेकिन अब की जो पॉलिसी बनी है वो कॉम्प्रिहेंसिव इस मामले में है कि हम डिजाइन, फैब्रिकेशन और पैकेजिंग तीनों की बात कर रहे हैं और ये तीनों का होना जरूरी है। अगर आप टेक सॉवरेनिटी की बात करते हैं या चिप में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो तीनों का होना जरूरी है। इसमें जो गवर्नमेंट ने क्लियर पॉलिसी जो अब लेकर के आए उसमें 3 तरह की चीजों का जब तक समागम नहीं होगा वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का में कोई काम नहीं हो पाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। 3 चीजें क्या है? टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड टैलेंट। तो हम लोग सब जानते हैं कि इंडिया में 20% ऑफ द वर्ल्ड डिजाइन इंजीनियर्स आर इन इंडिया, यानी कि ये 20% लोग इतने कैपेबल हैं वो कॉम्प्लेक्स चिप्स के डिजाइन पर काम करते हैं, भले वो अपनी कंपनी के लिए नहीं काम करते हैं, वो विदेशी कंपनी के लिए काम करते हैं। लेकिन ये जो टैलेंटेड लोग हैं जब इतना कठिन काम कर सकते हैं तो कोई भी काम कर सकता है, फैब्रिकेशन का हो चाहे पैकेजिंग का हो, यानी हमारे पास टैलेंट है। टेक्नोलॉजी के लिए हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी आपको कहीं ना कहीं से लानी होगी। तो आपने देखा है कि टाटा का पीएसएमसी ताइवान के साथ में कोलैबोरेशन हो रहा है, माइक्रोन जो ग्लोबल मेमोरी कंपनी है उसने खुद से यहाँ पे इंडिया में टेक्नोलॉजी लेकर के आए, अपना पैकेजिंग प्लांट लगा रहे हैं, सीजी पावर का रेनेसंस के साथ में है। ऐसे करके हमारे जितने भी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं सबका कोई ना कोई टेक्नोलॉजी पार्टनर है। और उसके बाद जो तीसरी समस्या थी कैपिटल की, उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको 50% पारी पासू देंगे। यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो 50% और दूसरा पारी पासू। पारी पासू का मतलब है कंक्रीट इन्वेस्टमेंट, अगर 100 रुपए की आवश्यकता है प्रोजेक्ट में और 50 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया, जैसे 50 रुपया पार्टी ने लगाया जो एप्लीकेंट हमारा उसने लगाया, तो कंक्रेंट ऐसे करके हर स्टेज पर वो पैसा हम रिलीज करते हैं। जबकि गवर्नमेंट की दूसरी पॉलिसी होती है कि जब तक प्रोजेक्ट लग नहीं जाए गवर्नमेंट कोई पैसा रिलीज नहीं करता, वो रिइंबर्समेंट मोड में होता है। लेकिन पारी पासू में कंक्रेंट मतलब जैसे जैसे खर्चा होता आता है गवर्नमेंट उसके साथ उसी अनुपात में 50% के अनुपात में रिलीज करते आती है। साथ में स्टेट गवर्नमेंट ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है इसमें और 20-25% कैपिटल इंसेंटिव वो भी दे रहे हैं। तो कैपिटल की समस्या जो थी वो इस तरह से दूर हो रही है। तो कैपिटल, टैलेंट और टेक्नोलॉजी, ये तीनों को मिला करके हम लोग जो पॉलिसी लेकर के आए हैं, इससे क्या हो रहा है कि कंपनियां जो इंडियन कंपनी जैसे टाटा है या सीजी पावर है, केन्स है, ये लोग सामने आ रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन करके प्रोजेक्ट लगाने के लिए इच्छुक हैं। क्योंकि हमारे यहाँ एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, हमारे यहाँ डिमांड है, इस पे किसी को कोई शक नहीं है। उस डिमांड के ऊपर में जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उसका हमने असेंबली शुरू किया था। असेंबली शुरू करने के बाद में उस वैल्यू एडिशन बढ़ाने के लिए हमने कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया और अब भारत सरकार एक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिसी भी लेकर के आई है। उसके बाद सेमीकंडक्टर्स का जो की आवश्यकता है उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम आ गया, जिससे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे 15% से 35% तक सेमीकंडक्टर चिप्स का वैल्यू होता है। और उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं R&D और प्रोडक्ट क्रिएशन में, क्योंकि प्रोडक्ट क्रिएशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम वो प्रोडक्ट के उपभोक्ता तो हैं लेकिन वो प्रोडक्ट के ओनर भी हमको होना चाहिए। और ये अगर हमारा हो जाता है, जिसके लिए R&D की आवश्यकता भी होगी, इनोवेशन की आवश्यकता भी होगी, जिस पर हम काम भी कर रहे हैं, तो हमारा पूरा इकोसिस्टम फुल चेन हमारा डेवलप हो जाएगा।
अमितेश सर, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि दुनिया के बहुत सारे देशों के बीच भारत को अपना स्थान बनाने में आप किस तरह की चुनौतियां सामने देख रहे हैं?
इसको अगर हम तीन तरीके से देखें कि डिजाइन में हम क्या करेंगे, तो चूंकि वर्ल्ड की जितनी अच्छी कंपनी है उसके सारे अच्छे सेंटर जो लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट सेंटर इंडिया में है और उसमें इंडियन इंजीनियर्स हैं जो टैलेंटेड हैं, जो काम कर रहे हैं और कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, 2 नैनोमीटर 3 नैनोमीटर पर काम कर रहे हैं, या तो इंडिया में है या अब्रॉड है। तो यही लोग जब बाहर निकल के अपनी कंपनी बनाएंगे, जिसके लिए गवर्नमेंट डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम लेकर के आई है और स्टार्टअप्स को, डिजाइन स्टार्टअप्स को हम बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे कि तीन तरह के सपोर्ट उनको दे रहे हैं जिससे कि उनका इनेबलमेंट हो रहा है। आपने देखा है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंदर में 23 स्टार्टअप्स को अप्रूवल मिला है। तो हम ये देख रहे हैं कि अगले 10 साल में हमारी अपनी कंपनी क्वालकॉम या एनवीडिया या ब्रॉडकॉम की तरह से होगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी कंपनी 10 साल में उतनी बड़ी हो जाएगी, लेकिन उस दिशा में हम अपनी रफ्तार पकड़ लेंगे। और जब एक बार कंपनी रफ्तार पकड़ लेती है तो उसको स्केल अप करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो मैं बहुत होपफुल हूँ कि डिजाइन के सेक्टर में हम लोग अपना स्थान बना लेंगे। जहां तक फैब्रिकेशन की बात है, तो फैब्रिकेशन में हर तरह के टेक्नोलॉजी नोड्स की आवश्यकता पड़ती है। हमारे यहाँ जो कंजम्पशन है उसके हिसाब से जो टाटा का फैब आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है कि ज्यादातर हमारे कंजम्पशन उसी टेक्नोलॉजी नोड के ऊपर में है जो कि हमारा पहला फैब, कमर्शियल फैब बन रहा है, जो कि 110 से 90 से 55 से 40 से 28 नैनोमीटर का फैब है। अब इसके आगे के जो फैब्स हैं जो कि वर्ल्ड में कटिंग एज फैब्स हैं, जो 3 नैनोमीटर के, 5 नैनोमीटर के, 7 नैनोमीटर, जिसमें TSMC की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे। हम अपना टेक्नोलॉजी में R&D करेंगे और उस दिशा में जब कदम बढ़ेगा तो लोअर नोड्स भी आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल हमारी जो आवश्यकता है कंट्री की, उसके हिसाब से हमारा टाटा फैब ठीक है, जिसको हम और स्केल अप नंबर्स बढ़ा सकते हैं उनको आगे चल करके। अब तीसरा सेक्टर है पैकेजिंग, इसमें हमारे 8 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं। पैकेजिंग में हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम एक बड़ा वॉल्यूम कैटर करेंगे इंडिया से और उसमें हम एडवांस पैकेजिंग की तरफ अब आगे बढ़ेंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे अप्रूव भी हुए हैं जो कि एडवांस पैकेजिंग से जुड़े हुए हैं। इसमें हम लीडरशिप हासिल करने के लिए कोशिश करेंगे। तो एक डिजाइन में और एक एडवांस पैकेजिंग में हम लीडरशिप हासिल करने की कोशिश करेंगे और फैब में हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे। और कुछ साल के बाद, 10 साल के बाद, आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी में भी, फैब में भी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी में R&D करते हुए हम लोग अपनी जगह तक पहुंच जाएंगे।
सुविमल जी, बाजार काफी बड़ा होता जा रहा है। अगर फॉर्च्यून बिजनेस इनसाइट्स की बात पर गौर करें तो उनका मानना है कि 2024 तक पूरी दुनिया का सेमीकंडक्टर मार्केट जो है वो 681.05 बिलियन डॉलर को पार कर गया है और 2032 तक ये 2062 बिलियन डॉलर के भी पार जाने की उम्मीद है। और ये भी माना जा रहा है कि भारत की अगर जहां तक हम बात करें तो 2026 तक 35 बिलियन डॉलर से 63 अरब डॉलर तक ये पहुंच सकता है। इस बढ़ते बाजार को देखते हुए भारत में किस तरह की संभावना आपको नजर आ रही है?
इस सेक्टर की एक्सपेंशन हमारे देश में जिस मात्रा में हो रहे उसमें पॉलिसी सपोर्ट सरकार की तरफ से काफी क्लियर दिखाई दे रहा है। जैसे कि 10 सारे की सैंक्शन प्रोजेक्ट्स हुए हैं और अभी रिसेंटली सरकार ने और 4 को परमिशन दी है जिसके उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में आ रहा है। शुरुआत में गुजरात में और कर्नाटका में और असम में भी एक टाटा की प्लांट सेमीकंडक्टर के। अब सरकार की तरफ से पॉलिसी सपोर्ट के बाद ये देखा जाना चाहिए कि इंडस्ट्री का रिस्पांस है। इंडस्ट्री का रिस्पांस आप देख रहे हैं कि 10 का 10 जो आए हुए और मोस्ट ऑफ देम इनके सबके साथ अच्छे अच्छे फॉरेन पार्टनर्स जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज फॉरेन पार्टनर्स है वो आए हुए। आप देख रहे हैं कि माइक्रोन की बात हमारी प्रीवियस वक्ता ने मेंशन किया था, टोक्यो इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे, प्रधानमंत्री जी खुद पिछले शनिवार इनकी फैसिलिटी जापान में गए थे। और इसके अलावा जो चिप की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में एक बड़ा भूमिका रहता है, नेदरलैंड्स की कंपनी ASML उसकी CEO भी कल आया है और उनका भी इंटरेस्ट है इस क्षेत्र में देश में इन्वेस्ट करने। तो ये जो एक टाइप की प्रचेष्टा सबके बीच में हो रहे, मुझे लगता है कि हम लोअर बेस से स्टार्ट नहीं करके हम एक ऑलरेडी एक्वायर्ड नॉलेज के साथ और कैपेबिलिटी के साथ हम एक ऊपर के बेस से शुरू कर रहे हैं, जहां से जो आगे जितना परसेंटेज भारत की तरफ से ये सेमीकंडक्टर चिप्स का बनते जाएगा ये धीरे 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 बढ़ते जाएगा। आज का डेट में अगर आप पकड़े तो हम 3% वो बना रहे, अब कुछ ही समय में आप 10-15-20% तक आप पहुंच सकते हैं क्योंकि हम खुद बड़े कंज्यूमर भी है। और इसके अलावा ये सारे जितने हम टाइप्स के इसके माध्यम से हमारे एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि इकोनॉमी ऑफ स्केल में हम प्रोडक्शन में हम यहाँ बहुत कम रेट में भी ये चिप्स बनाएंगे।
अमृत जी, अगर सेमीकंडक्टर बनाने की प्रक्रिया की बात करें तो ये प्रक्रिया बेहद जटिल मालूम होती है। इसमें रेत से पहले सिलिकॉन के तत्व को निकाला जाता है, इसके बाद सबसे पहले वेफर फैब्रिकेशन होता है जिसमें सिलिकॉन से वेफर तैयार किए जाते हैं, फिर पैटर्न ट्रांसफर होता है और इसके बाद इसकी डोपिंग की जाती है, फिर इसमें डिपोजिशन, ईचिंग और पैकेजिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये वास्तव में एक आधुनिक चमत्कार और इंजीनियरिंग की उपलब्धि है। इस प्रोसेस में बेहद सावधानी बरतनी होती है। आपसे ये समझना चाहते हैं कि जब भारत में संभावनाएं बढ़ रही हैं और आपने भी कहा कि स्किल्ड मैनपावर की बहुत जरूरत है, आप जिस पद पर रहे वहां पर किस तरीके से युवाओं को नर्चर किया जा रहा है, उनमें कौन कौन से स्किल को डेवलप किए जाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है?
जैसा कि मैं पहले भी बोल रहा था कि ये बहुत ही वास्ट फील्ड है और इसमें एक तो डिजाइन का सेक्टर है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग में भी मटेरियल्स साइंसेस जो है कि कौन से मटेरियल्स यूज किए जाएं, तो अलग अलग के मटेरियल साइंसेज की नॉलेज की बहुत जरूरत है। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जैसे जो वेफर जब बनाया जाता है जैसे उसको डिपोजिशन किया जाता है और उसके लिए क्या टेम्परेचर्स मेंटेन किए जाएं, कौन सी गैसेस इस्तेमाल की जाएं जिससे कि उसमें बिल्कुल क्लीनिनेस रहे, उसको समझने के लिए हमें लोगों को तैयार करना पड़ेगा, उनको स्किल करना पड़ेगा उस डायरेक्शन में। जो इनर्ट गैसेस होती हैं जो या गैसेस इस्तेमाल होती हैं इसके निर्माण में, तो उसकी नॉलेज के लिए लोगों को तैयार करना पड़ेगा, टेस्टिंग के लिए करना पड़ेगा कि जब एक सेमीकंडक्टर बन जाता है तो उसे टेस्ट कैसे किया जाए, तो उसके टेस्ट के जो प्रोसीजर्स हैं, जो उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए उसको समझना पड़ेगा। तो एक बहुत वास्ट फील्ड है, इसलिए हमें जो वर्कफोर्स डेवलप करना पड़ेगा वो अलग अलग दिशाओं में करना पड़ेगा। कुछ लोग डिजाइनिंग में जाएंगे, कुछ जो सपोर्ट सिस्टम्स हैं, जो यूटिलिटीज होती हैं, जैसे पावर ही है तो पावर कितना क्लीन होना चाहिए, कभी पावर जैसे फेलियर नहीं होना चाहिए, उसके लिए बैकअप पूरा 100% बैकअप रहना चाहिए कि ताकि अगर वो कुछ क्षणों के लिए भी अगर पावर चला गया तो बहुत नुकसान हो सकता है निर्माण में, तो उसके लिए भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेनिंग देनी पड़ती है। और टेस्टिंग के अलावा जब इक्विपमेंट जो निर्माण करता है सेमीकंडक्टर्स को, तो उसकी मेंटेनेंस के लिए भी हमें लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा।
जी, सेमिकॉन इंडिया 2025 में हिस्सा ले रहे सीमेंस ईडीए के वाइस प्रेसिडेंट रुचिर दीक्षित ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता से भारत बहुत जल्द सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरेगा।
प्राइम मिनिस्टर जी ने 2-3 चीजें कही, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने कही, हम थोड़ा लेट शुरू हुए थे लेकिन फ्यूचर हमारा है, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज इन द लास्ट 3 इयर्स व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन, प्रोडक्शन लिंक स्कीम, डीएलआई स्कीम, नाउ दे आर टेकिंग शेप, और ये हमारी शुरुआत है। तो उनकी स्पीच ने आज ये हमें बता दिया, जिन्हें शायद ये पता नहीं था पहले, कि हमारे पास में 2-3 एडवांटेज है। एक मार्केट हमें ट्रस्ट करता है, वर्ल्ड हमें ट्रस्ट करती है, और हमारे पास एक वर्कफोर्स है, यंग जनरेशन, विच इज गोइंग टू गो एंड मेक अ डिफरेंस इन द सेमीकंडक्टर वर्ल्ड। सो आई एम वेरी एंथुसियास्टिक एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट द गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग द इंडस्ट्री सो मच।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, रेल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री को विक्रम 32-बिट प्रोसेसर और 4 प्रोजेक्ट्स के टेस्ट चिप्स गिफ्ट किए हैं। विक्रम 32-बिट प्रोसेसर पूरी तरह भारत में विकसित पहला 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर है, जिसे इसरो के सेमीकंडक्टर लैब ने बनाया है। इसे लॉन्च व्हीकल्स की मुश्किल पर्यावरणीय हालातों में इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है। अश्विनी वैष्णव ने भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र की दिशा में हो रही प्रगति से जुड़े आंकड़े भी पेश किए।
बहुत खुशी की बात है कि भारत में पूरा इकोसिस्टम आ गया है, आ रहा है। ये एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, जैसे स्टील है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते हो, ब्रिज बना सकते हो, बिल्डिंग्स बना सकते हो, वैसे ही सेमीकंडक्टर है तो आप बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। कार के लिए चाहिए, फ्रिज के लिए चाहिए, स्कूटी के लिए चाहिए, डिफेंस में मोबाइल फोन के लिए चाहिए, लैपटॉप के लिए चाहिए, हर चीज के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए। तो देश के लिए बहुत बड़ी एक जरूरत है, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे बहुत फोकस दिया और अब अपने 10 प्लांट में से 4 प्लांट की पायलट लाइन रेडी है और इस साल के एंड तक चारों पायलट लाइन्स में प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। सीजी सेमी में प्रोडक्शन चालू हो गया। भारत में टैलेंट को डेवलप करने के लिए बड़ा काम चल रहा है। 278 यूनिवर्सिटीज में सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग दी जा रही है और बहुत ही खुशी की बात है कि जो सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग लिए हुए स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 20 चिप्स ऑलरेडी डिजाइन की है, डिजाइन करके उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। तो ये देश के लिए एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेमीकंडक्टर होता है तो कई सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में इसका बेनिफिट मिलता है।
सेमिकॉन इंडिया 2025 के और क्या है मायने, किस तरह की हो रही है प्रगति, क्या कुछ रहा समिट में, बता रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता रईसुद्दीन।
नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में 3 दिनों तक चलने वाले सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राउंड टेबल चर्चा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों और उद्यमियों से सेमीकंडक्टर के भविष्य पर चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सम्मेलन स्थल पर आयोजित सेमीकंडक्टर पर आधारित प्रदर्शनी का दौरा किया और उद्यमियों से बातचीत कर उनके उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस दौरान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और मंत्रालय में राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद थे। इस दौरान सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में नवाचार को और मजबूत करने के लिए मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीप टेक अलायंस के गठन की भी घोषणा की थी। वहीं कल सम्मेलन में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र के 12 समझौता ज्ञापनों की भी घोषणा की गई, जिनका उद्देश्य कैमरा मॉड्यूल, माइक्रोफोन बर्ड्स, मिनिएचर पैकेजिंग और प्रतिभा विकास इकोसिस्टम जैसे उत्पादों के डिजाइन और निर्माण में स्वदेशी क्षमताओं का विकास करना है। इसमें सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम की प्रगति, स्मार्ट विनिर्माण, अनुसंधान विकास तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, निवेश के अवसर और राज्य स्तरीय नीति कार्यान्वयन आदि पर सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन से आकाशवाणी समाचार के लिए रईसुद्दीन रिहान, दिल्ली।
चर्चा का विषय है कार्यक्रम में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के चेयरमैन पंकज महेंद्रू जी। सेमिकॉन इंडिया 2025 इस समय दिल्ली में आयोजित हो रहा है, जहां दुनिया भर के अलग अलग सेमीकंडक्टर से जुड़ी कंपनियों के सीईओ आ रहे हैं और प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि भारत बहुत जल्द इस दिशा में एक सशक्त प्लेयर बनकर उभरेगा। क्या देखते हैं भारत की रणनीति और अगले कुछ समय में अगर हम देखें तो किस तरह के और प्रोजेक्ट्स की आप उम्मीद कर रहे हैं ताकि हम एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकें?
ये पिछले 10-11 साल की मेहनत का नतीजा है। पहले तो सारा इलेक्ट्रॉनिक खास करके मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिश हुई, उसका बहुत स्तर ऊंचा हुआ। अब हम 5 लाख करोड़ से ऊपर मोबाइल फोन बनाते हैं और 2 लाख करोड़ से ऊपर एक्सपोर्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है हमारा वो मैन्युफैक्चरिंग वो 11.5 लाख करोड़ से ऊपर है। तो एक रिकग्नाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग नेशन हम बन गए। तो सेमीकंडक्टर जो होता है वो एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, वे हाईली कैपिटल इंटेंसिव है ये, और ये पिछले 40 साल में देश ने कई बार कोशिश की पर हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए, और अब फाइनली पिछले 2-3 साल से हमारे जो फैब का भी ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ है, और अब 9 और 10 पैकिंग यूनिट जो हैं, जो कि सेमीकंडक्टर चिप को पैक करते हैं, जो भी बहुत हाईली टेक्निकल और कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है जिसमें बहुत स्किल की जरूरत होती है, वो भी एस्टैब्लिश हो रही है। और ये जो सबसे अच्छी बात ये है कि दुनिया की बड़ी कंपनियां तो यहाँ आई हैं, बट जो इंडियन कंपनीज ने ये बेड़ा उठाया है विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, तो ये जो स्किल परमानेंटली एक बारी ट्रांसफर होगी इंडिया में तो वो बहुत ही अच्छा है। अब हमने ये बेड़ा उठाया है कि हम प्रोडक्ट डिजाइन करके अपने, जिसमें कि एंड टू एंड हमारे में कैपेबिलिटी आए, और फिर वो प्रोडक्ट डिजाइन जो है वो हम दुनिया भर में बेचें, इंडियन डिजाइन चिप्स। डिजाइन में बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएशन है, तो पहले हम ये नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कार्ड बिफोर द हॉर्स वाली कहानी हो रही थी। अब जब एक बेस बन गया है, फाउंडेशन बन गई है, तो उससे अब सब एवरीथिंग इज गेटिंग लाइंड अप प्रॉपर्ली।
गौर करने वाली बात है कि अभी दुनिया के कुछ देशों की कंपनियां ही सेमीकंडक्टर की चिप्स बनाती हैं। अगर पूरे दुनिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया में 25%, चीन में 22%, ताइवान में भी 22%, जापान में 13%, अमेरिका में 8%, यूरोप और मध्य पूर्व में 6% और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में 4% सेमीकंडक्टर चिप्स बनते हैं। सुविमल जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि इन देशों के बीच भारत को अपने आप को स्थापित करने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
ये जो चिप्स की जो जियोपॉलिटिक्स है, और विशेषकर पिछले 3 साल से चिप्स के ऊपर जिस तरीके से अमेरिका की नजर आए, वो जियोपॉलिटिकल वाले एंगल से, गैलियम नाइट्राइड और गैलियम आर्सेनाइड की बात हुई थी कुछ समय पहले, तो अमेरिका ने माइन्यूटली जाके इवन कंपोनेंट्स का ऊपर प्रतिबंध लगाए जो चाइना को आप किसी तरीके के सप्लाईज ना दे पाए। तो ये जो डायनेमिक्स बड़ा एक फ्लूइड डायनेमिक है, और जिस तरीके से इस क्षेत्र में भी यूरोप के साथ भी अमेरिका की टेक कंपनीज को लेके कुछ एक तनाव चल रहे, तो ये एक जो डायनेमिक्स आपकी चिप इकोसिस्टम में आए, इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या आपका स्थान इसी में भी निकाल के आता है। मुझे समझ में लगता है कि जियोपॉलिटिक्स का बाहर भी ये जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल रहेगा जिससे हमारा मार्केट आगे बढ़ते जाएगा, तो ये सारे चीज एक इकोसिस्टम बनेगा, एक ट्रस्टेड इकोसिस्टम बनेगा जिसमें हमारा भूमिका रहेगा, और मुझे लगता है कि यही एक स्थान है जिसमें हम कॉम्पिटिटिव इस समय में अगले कुछ सालों में जिस तरीके से हम कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे और कैपेसिटी बढ़ाने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी जराएंगे, तो ये वाइब्रेंसी जो इस सेक्टर का होगा इसी से हमारा बड़े जल्दी चिप इकोनॉमी का उसमें प्रभाव पड़ेगा।
जी, आप सभी का इस आकाशवाणी के विशेष चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत आभार। भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के बड़े विजन का हिस्सा है। ये डिजिटल इंडिया से शुरू हुई इंडिया स्टैक, यूपीआई, आधार और टेलीकॉम नेटवर्क ने हर भारतीय को तकनीक उपलब्ध कराई। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन इकोसिस्टम को भी मजबूत किया है। अब हम सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और उपकरणों के निर्माण का इकोसिस्टम बना रहे हैं। सेमीकॉन इंडिया समिट 2025 इसी यात्रा का ही एक पड़ाव है। सेमीकॉन इंडिया 2025 के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया संदेश साफ है कि भारत अब चिप्स की दुनिया में दर्शक नहीं बल्कि खिलाड़ी बनना चाहता है। विक्रम 32-बिट इंडिजिनस प्रोसेसर का प्रदर्शन डिजाइन क्षमता का संकेत देता है, और सानंद ओसैट पायलट जैसे प्रयास मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग की जमीनी तैयारी दिखाते हैं। लक्ष्य है कि 2025 के अंत तक बाजार तैयार स्वदेशी चिप्स की आपूर्ति शुरू हो जाए। ये रास्ता लंबा जरूर है, पर दिशा सही होगी तो मंजिल पा ली जाएगी।
अभी आप सुन रहे थे भारत की सेमीकंडक्टर क्रांति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमितेश कुमार सिन्हा, इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के चेयरमैन पंकज महेंद्रू, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल्स काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष अमृत मनवानी और आईटी एवं तकनीकी विशेषज्ञ सुबिमल भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
चर्चा का विषय है।